आप लोगों को याद होगा पिछले बार हमने शुरू करा था प्रभु को देने के बारे में, और हमने ये देखा था कि हमें प्रभु को क्यों देना चाहिए। लेकिन सचमुच में गंभीर विषय है, और हम देखना चाहेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। ये जरूर हमारा विषय है कि हमें कैसे देना है, लेकिन हमें धन की बारे में कुछ मूल्यताओं को जाना समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। और आज मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान लाना चाहूंगा लूका का 16 अध्याय पहले पद से लेकर 13 पद तक। पढ़ दीजिए आप सफाई से लूका का 16 अध्याय और पहले पद से लेकर 13 पद तक। लूक चैप्टर 16 वर्सेस फ्रॉम 1 to 13।
फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा कि क्या बात है कि जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं, भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से निकाला जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3,000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वो समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वासोग्य है, वह बहुत में भी विश्वासोग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वासोग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराए का धन उपयोग करने में विश्वासोग्य ना रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आपको याद होगा पिछले इतवार को जब यहाँ पर इकट्ठा थे, हमने उत्पत्ति उसके 14:17 से लेकर 20 तक ध्यान में रखते हुए 3 बातों को देखा था कि हम क्यों परमेश्वर को देते हैं। और हमने देखा था कि देने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, देने के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, और देने के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और इन 3 बातों पर हमने थोड़े देर के लिए पिछले इतवार को विचार किया था। आज जो इस काम को हम देखना चाह रहे हैं, और मैंने पिछली बार इस बात को बताया था, जिक्र किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों सुसमाचार में इन 38 दृष्टांतों का उपयोग किया, और उसमें से लगभग 25 दृष्टांत ऐसे हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने धन के बारे में बात करी है, धन के बारे में शिक्षा दी है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को जानते थे कि मनुष्य के जीवन में धन का कैसा प्रभाव हो सकता है और कितना ये महत्वपूर्ण है मनुष्य को जानना। और जब हम इस स्थल में पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक दृष्टांत है, पहले पद से लेकर 7 पद तक वो दृष्टांत को वर्णन करते हैं, फिर 8 पद से लेकर उस 13 पद तक हम कुछ बातों को निचोड़ में देखते हैं, और इन 3 बात 8 से लेकर 13 पद तक जो 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं वो ये है कि इस धन का उपयोग हमें आत्माओं को जीतने के लिए करना है, पहली बात, लोगों को बचाने के लिए करना है। दूसरी बात, इस धन का उपयोग हमें विश्वास युग भंडारी के समान करना है। और तीसरी बात, हमें धन से बढ़कर प्रभु को अपना स्वामी अपना प्रभु मानना है। ये तीन बातों पर हम थोड़ी देर के विचार करना चाहेंगे। पहली बात, इस धन का उपयोग हमें आत्मा को बचाने के लिए, जीवनों को बचाने के लिए करना है। दूसरी बात, इस धन का उपयोग हमें विश्वास के भंडारी के समान करना है। तीसरी बात, इस धन का उपयोग हमें धन से बढ़कर परमेश्वर की सेवा को करना है, परमेश्वर को जानना है। सो जब हम इस घटना को देखते हैं तो प्रभु वर्णन कर रहा है किस प्रकार से दो जन है, एक स्वामी है अधिकारी है और एक सेवक है वो भंडारी है। और जब वो सेवक धनवान है चला जाता है और जाने के समय समय अपने सेवक को कुछ जिम्मेदारी दे जाता है, अब भंडारी को मालूम चलता है कि मेरा स्वामी आने वाला है, स्वामी आएगा और लेखा लेगा, हिसाब किताब लेगा, मैं क्या करूंगा। अभी स्वामी नहीं है, वो उस धन को अपनी मर्जी से उड़ा रहा है, जैसे चाह रहा उसको खर्च कर रहा है। लेकिन अब उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ कि वो आएगा तो मैं कैसे उसको हिसाब दूंगा। अब उसने सोचा, सोच बैठ करके उसने कुछ करना शुरू करा और उसने अपने बाह्य खाते को जो कुछ बता बैठकर ठीक करना शुरू करा। अब जब प्रभु यहां वचन मिलता है और पहले पद से लेकर सब, लेकिन जब आठवें पद में हम आते हैं तो एकदम से स्थिति बदल जाती है। सातवें पद का जो अंत होता है क्या नाम से, तब उसने ये सब कुछ करा और तब उसके बाद आठवें पद में उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की। हम कई बार सोचते हैं कि क्यों ये लिखा हुआ है उस भंडारी की सराहना कर प्रभु कर रहा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन में कभी गलत शिक्षाएं नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी गलत बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, पर उन बातों के द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है हमें सीखना है। मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए बोलना चाहूंगा। भाई अजय मेरे सामने बैठे, माफ कीजिए आप ही का नाम ले रहा हूं मैं, सामने बैठे इसलिए। कुछ लोग बैठे हुए हैं, अजय भाई भी बैठे हुए हैं और कुछ ऐसा काम किया उन्होंने और मैं आता हूं, मैं कहता हूं अजय भाई शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बढ़िया, आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत होशियार हैं। और तब फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना मुंह करता हूं लोगों की तरफ, भाई लोगों ध्यान रखिए अजय के समान काम मत करिएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अजय भाई शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी चतुराई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अजय के समान काम नहीं करना। मतलब अगर मैं वो कह रहा हूं तो एक व्यंगात्मक रूप में या उस रीति से करते हुए कुछ बातों को कि अजय के जीवन को लेकर, सॉरी माफ करें भाई अजय, आप कोई भी जानो कि उनके जीवन को लेकर हम किस प्रकार से सही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, सही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है, यहां पर एक चतुर भंडारी को देख रहे हैं, लेकिन ये चतुर भंडारी किस बात में चतुराई दिखा रहा है, इसका ध्यान किस बात में है। और तब हम आगे चलते हुए इन बात को देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले बिंदु तक आपके सामने, पहला बिंदु, इस धन के उपयोग के द्वारा हमें आत्माओं को बचाना है। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, आइए मेरे साथ आठवें पद में आइए। तब उसके स्वामी ने अधर्मी भंडारी की सराहना की क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया। चतुराई से कार्य किया, क्या चतुराई से काम कर रहा है, वो उस धन का उपयोग अपने लिए कर रहा है। कारण क्या है, वो जब उसको मालूम चला कि उसका स्वामी आने वाला है, वो कह रहा है मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं गड्ढा नहीं खोद सकता, मैं परिश्रम नहीं कर सकता, वो मैं बाहर जाकर भीख भी नहीं मांग सकता, मुझे लज्जा आती है, अब मैं कैसे। तब वो क्या कर रहा है, इन लोगों को अपने में मिला रहा है और उस दाई खाते को जो उन्होंने 80 रुपए देना चाहिए था तो उसका 20 रुपए लिख दे रहा है, या 500 रुपए देना चाहिए था 100 रुपए लिख दे रहा है, और जो पैसा बचा है वो कह रहा भैया तुम मेरे मित्र बने रहना ताकि जब मेरा स्वामी आ जाए अरे तुम मुझे काम से निकाल दे तो उस धन से मैं अपना जीवन चला लूं, तुम मेरे मित्र बना रहा। ये झूठ छल और धोखे द्वारा उन लोगों को मित्र बना करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाह रहा है। उसका ध्यान उस स्वामी के न्याय के बारे में, सच्चाई के बारे में, सारी चीजें बातें नहीं, लेकिन अपने बारे में है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं मेरा आगे जीवन कैसे चलेगा। और उस धन का उपयोग वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है। लेकिन तब वो कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हुए आगे बोलते हैं, कह रहे क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्र से अधिक चतुर हैं। क्या मतलब है? वो कह रहा है ठीक है, अगर ये अपने स्वार्थ के लिए चतुराई से काम कर रहा है तो क्या हम निर्बुद्ध हैं? और इसीलिए जब हमने प्रेरित जब नीति वचन उसके तीसरे अध्याय को पढ़ा था तो तीसरे अध्याय में पांच या छह पद में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा लेना, अपने अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके काम करना। ये व्यक्ति अपनी बुद्धि में सब काम करना है, लेकिन एक विश्वासी एक प्रभु का जन जो है वो परमेश्वर की बुद्धि में होकर काम करता है, और चाहे पैसे का मामला चाहे कुछ मामला। और जब इस तरह से काम करता है तो दोनों चीज के तरीके बदल जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। तब आगे चल के कहता है कि ज्योति के पुत्र को अधर चतुर होना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते धन के बारे में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर जब मत्ती उसके पांच अध्याय उसके सोलह पद में कहा लिखा हुआ है, प्रभु कहता है वचन में, तुम्हारे धार्मिकता के कार्यों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन आगे चल के उसकी अध्याय में छठे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, लेकिन उसी के बीच में परमेश्वर का वचन यह भी कहता है तुम्हारे कार्य फरीसियों और शास्त्रों से बढ़कर होने चाहिए। एक और कह रहा है तुम्हारे कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, दूसरे को कह रहा है तुम अपने कार्य को ऐसा ना दिखाओ, मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, तीसरा कह रहा है तुम्हारे कार्य फरीसियों और शास्त्रों से बढ़कर होने चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं एक पद के द्वारा हम कई बार सीमित होकर वचन को नहीं समझते, ये बाइबल की विशेषता है। और इसलिए वचन वचन को स्पष्ट करता है, व्याख्या करता है, प्रमाणित करता है और समझाता है, और इसलिए मैं वचन का सहारा लेना है। अर्थ यह है वहां पर वो देने के लिए बात करते हो, कहता है कि तुम जब देते हो तो अपने दान को गुप्त रखो, ये रखो ऐसा रखो ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा ना करें या तुम लोगों से तुम महिमा लो, उस स्थल को पता। पर मैं जो आपके सामने विचार लाना चाहता हूं वो ये है कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की बुद्धि और समझ को लेकर अपने कार्य करते हैं, चाहे वो धन के उपयोगिता में क्यों ना हो। और तब वो यहां पर कहता है कि अगर हम ज्योति के संतान हैं तो हमारी समझ, हमारी चतुराई संसारिक चतुराई के समान नहीं होनी चाहिए, हमारी होशियारी, हमारी समझ, हमारी बुद्धि इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत करके मित्रों को तैयार कर रहा है, मित्रों को कर रहा है कि जब स्वामी आ जाएगा किस प्रकार से लोग मेरे साथ करेंगे। तुम उस धन का इस प्रकार से उपयोग करो ताकि तुम यहां से मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जब तुम अनंत में जाओ, स्वर्ग में जाओ, तुम्हारे पास और मित्र भी हो सके, ताकि वहां पर तुम अकेले ना हो लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे लोग भी हो सके जिनको तुम प्रभु में लेकर आए हो। और यही बात के लिए सुष्मी को ध्यान रखते हुए आज सबसे पहले प्रार्थना की गई थी कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आत्माएं और अधिक लाई जा सके। और तब वो यहां पर कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए, ये अधर्म का धन क्या मतलब है, ये धन नष्ट होने वाला है, ये धन परमेश्वर ने हमारी उपयोगिता के लिए कुछ समय के लिए दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा धन तो परमेश्वर का धन है, सबसे बड़ा धन तो परमेश्वर का राज है, सबसे बड़ा धन तो है, ये धन तो चोर चुरा सकते हैं। आज सुबह सुबह आपको मालूम होगा यहां चिनेट में एक बड़ी कल घटना घट गई, एक बैंक लूट लिया गया, स्टेट बैंक, और वहां ना केवल स्टेट बैंक ले गया, वहां पर चोर को भी वो जो गार्ड था उसको भी मार गया और लूटे रहे आए और उसको लूट के चले गए। गार्ड था, सब कुछ था, बंदूक थी उनके पास, सब कुछ था, लेकिन फिर भी लूट ले गए। ये धन जो है वो नष्ट होने वाला धन है, कभी भी किसी तरह से नाश होता है, लेकिन हमको उस धन की खोज करनी है। और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये धन हमारा स्वास्थ्य होता है, ये धन हमारी नौकरी होती है, ये धन हमारा परिवार होता है, ये धन हमारा पैसा जो हमारे हाथ में होता है, उसके द्वारा हमें अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए कि ताकि हम ऐसे मित्र को जमा कर लें जो हम इस संसार से जाने बाद वो हमारे साथ वहां पर देखे जा सके। मेरे प्रियो माफ कीजिएगा, एक विश्वासी का सच्चा समर्पण यह रहता है कि मेरे द्वारा कोई ना कोई आत्मा जीवन परिवार बच जाए और बन जाए। दो बातें कह रहा हूं मैं, बच जाए और क्या हो जाए, बन जाए। यह हमारा दर्शन होना है, यह हमारी इच्छा होना चाहिए, यह हमारा बोझ होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारे धन के उपयोग के द्वारा परमेश्वर ने क्यों हमें धन दिया है, केवल हमें केवल इंजॉय करने के लिए नहीं दिया, अभी हम देखेंगे आगे चल के कुछ बातों को, लेकिन ये हमारा होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं उस दिन कह रहा था तो मैं मोटिव की बात कर रहा था कि हमारा हमारी मंशा क्या है धन के बारे में। अगर हमारा मंशा, हमारा मोटिव, उद्देश्य अलग होता है, एम अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन मंशा अलग होती है, जो अंदर हमारे हृदय में पाई जाती है, जिसके अनुसार हमारे जीवन का नियंत्रण होता है कामों में। अगर हमारे अंदर यह मंशा है कि प्रभु जो तूने मुझे दिया उसके द्वारा लोग बचे, जैसा परमेश्वर कह रहा है कि अपने लिए मित्र बना लो, जब वो समाप्त हो जाए तो क्या होगा? समाप्त कब? आपको मालूम है अलेक्जेंडर ग्रेट एक बहुत महान राजा था, बहुत कम आयु में रहा उसकी, लगभग 35-36 साल की आयु तक जीवित रहा वो। लेकिन जब वो मरकर जा रहा था उसने कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा को पूरा कर देना। धनवान था वो, छोटी सी आयु में उसने बहुत कुछ कमाया, नाम कमाया, शौहरत कमाई, पैसा कमाया, और उसके बाद उसकी सेना बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन जो मरने था उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे कफन में से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल के रखना और ऊपर ये लिख देना, देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा। वो खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा। ये धन सब कुछ यही छूट जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो उसको लेकर जाएंगे जो हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारी प्रार्थना द्वारा, हमारे धन के खर्च के द्वारा, हमारे समय के द्वारा, हमारे सब कुछ के द्वारा, जिनको हमने परमेश्वर के राज में पहुंचा दिया है। और मेरे प्रियो, सियोन कलीसिया का यही एक दर्शन है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार इस कलीसिया के इस दर्शन को अपने अंदर ले लें। अब ये नहीं कि हम भूखे नहीं करें, हम आगे चल के देखेंगे उसको परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। ये कैसा विषय है जिसमें अगर हम कंटिन्यू कई दिन तक देखें तो बहुत सारी चीज बात सीख सकते हैं। लेकिन आगे चल के पहली बात, इस धन को हम इस प्रकार से उपयोग करें कि उसके राज के लिए लोग जीवन लेख जीवन बच सके। हमारे अंदर ये कंसर्न हमेशा रहना चाहिए, हमारे अंदर ये चिंता रहनी चाहिए कैसे हम लोगों का निर्माण कर सके, लोगों बढ़ा सके। आपको मैं कुछ बातों को, प्रैक्टिकली बातों को आपके सामने लाऊंगा जो समय में हम यहां पर करने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा, पहले जनवरी को दो साल पहले की बात है कि हम यहां पर इकट्ठा थे, और उससे पहले मैं बाराबंकी गया, और जब बाराबंकी में गांव में, जिस गांव में हमारी सेवा चल रही है, जब मैं और आंटी हम दोनों जन थे, हम निकल के वापिस आ रहे थे, एक बहन अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी हो गई और उसने बुलाया, अंकल 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 आवाज दी। मैं गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन जब उसने बुलाया तो मैंने चुप रहा। हम लोग सामने गए, जब उसके घर में हम गए 27 दिसंबर को, तो देखा वो छोटा बच्चा शायद कुछ महीने का, एक दो महीने का, लेकिन उस बच्चे को सुलाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं, उनके घर में छत नहीं, और 27 दिसंबर जाड़े का समय, मेरे आंसू निकल गए। हम यहां पर आए, और पहले आपको याद होगा जो आप लोग यहां पर थे, पहली जनवरी को जब कंबाइंड सर्विस होती है, मैंने यहां पर अनाउंस किया, बताया, और मैंने अनाउंस करने के बाद मैं बोला कि आज की जो कुछ भी ऑफरिंग होगी हम उसको छत देने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने सहायता की, उसी समय उसी दिन करीब 14,000 समथिंग ऑफरिंग आई, उसके बाद कई लोगों ने और भी मिलके, और प्रभु का धन्यवाद हम उसको घर छत दे सके। एक भाई के लिए और कहा, जैसे कहा एक भाई निकल के गया यहां से, और निकल के गया उसने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले और कहा ये उस दूसरे के भाई के घर में छत लगाने के लिए, ब्रदर मेरी तरफ से हो गया। क्या मतलब है? हम बचाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, ये हमारा बोझ है, और प्रभु की सहायता से हर साल हम इस प्रकार के व्यवहारिक कार्यों को करने में संलग्न हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत लोगों की मदद करी कई तरह से, जैसे बात सामने आई मिलकर के, किसी के काम में मदद करी, किसी व्यापार में मदद करी, किसी के आस्था में मदद करी। क्या हो रहा है इन सब कुछ के द्वारा? क्या दर्शन है? क्या बोझ है? क्या धन का उपयोग है? ये इसलिए ताकि हम लोगों को प्रभु के राज में दृढ़ बना सके, बचा सके, दृढ़ बढ़ा सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्बुद हैं, निर्बुद्धता के साथ पैसों भेजें, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की समझ और बुद्धिमान के साथ हम इस बात को ध्यान रखें। वो कह रहा है ताकि जब तुम यहां से संसार से चले जाओ तुम्हारे पास मित्र हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ चुनौती देना चाहता हूं, अगर आज आपकी आंख बंद हो जाए, क्या कोई एक मित्र है, कोई एक आत्मा है जिसको आप लेके प्रभु के सामने खड़े हो सकेंगे? बहुत सारे हैं, लेकिन हम तरीकों को देखेंगे आगे चल के कैसे हम उसमें सहयोगी कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोने वाला कोई और, सींचने वाला कोई और, काटने वाला कोई और, हम सब प्रभु के खेत के सहकर्मी हैं, हमारी अलग अलग तरीके हैं। लेकिन हमारा हृदय में लालसा ही होनी है कि प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा, अपने धन के द्वारा, हम प्रभु तेरे राज में लोगों को जुड़ते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारा बोझ होना है, हम ये इस रीति से जीना चाहते हैं। और इसलिए पहली बात यह है, वो कह रहा है कि धन का उपयोग तुम इस प्रकार से करो, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी चतुराई के लिए, अपने चलाके के लिए। तुम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करोगे, तुम्हारी जीविका कैसी व्यतीत होगी, संसार के मित्र तुम्हारी कैसे मदद करेंगे, लेकिन उस धन को इस तरह से उपयोग करो ताकि तुम्हारे पास संसार से जाने के बाद भी तुम्हारे कुछ मित्र अनंत काल के हो जाए, आत्मा जीत जाए, बच जाए। पहला तर्क। दूसरा वो आगे चल के कहता है इस धन का 10 और 12 पद में कहता है जो अत्यंत छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें और कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य ना रहे तो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? ये धन भंडारी शब्द बाइबल में जो है यहां पर करीब 5 बार भंडारी, भंडारीपन के बारे में आया है। भंडारी एक शीर्षक है, भंडारी एक गुण है, भंडारी एक इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टूवर्ड। फिर उसके बाद अगर सच पूछा जाए उसका अर्थ मतलब होता है स्टोर कीपर। मैं एचएल में सर्विस करता था और एचएल में सर्विस करने के बाद मुझे एचएल छोड़ना पड़ा। जब मैंने एचएल छोड़ा, मैंने रिजाइन करा, तो मुझे सब कुछ स्टोर से हम लोग सामान टूल्स लेके औजार लेकर आते थे और काम करते थे और पर्ची देते थे और पर्ची वहां रहती थी और उसके बाद। लेकिन काफी साल हो गए थे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूल्स गायब हो गए, टाइम से वापिस नहीं करा, टाइम से कुछ और नहीं करा। और जब मैंने अपना नो ड्यूल लेने में हम गए तो स्टोर में पहुंचे तो जो स्टोरेज इंचार्ज थे उन्होंने पूरे मेरे रिकॉर्ड देखा और देखा कि आपका इतना सामान अभी तक वापस नहीं आया था स्टोर में। और तब क्या उन्होंने कैलकुलेट करके पूरा पैसा मेरा काट लिया। स्टोर से मैं सामान लिया, मैंने यूज करा, लेकिन मुझे काम के लिए दिया गया था, मुझे छोड़ते समय पूरा हिसाब देना पड़ा। मैं स्वामी नहीं था, मैंने उपयोग करने के लिए लिया, मुझे मिला गया था, मुझे वो उपयोग करने के लिए मुझे मिला था और मुझे उसको हिसाब देना पड़ा। हम इस संसार में हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको भंडारी बनाया है, धन का भंडारी है, समय के भंडारी हैं, परिवार के भंडारी हैं, सेवा के भंडारी हैं, सुसमाचार के भंडारी हैं, संबंधों के भंडारी हैं। बाइबल में करीब 7 या 8 ऐसी बातें हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भंडारी हो। सुसमाचार के हम भंडारी हैं, संबंध के भंडारी हैं, और इसलिए वो कह रहा भंडारी, वो कह रहा है इस भंडारी का जिम्मेदारी थी कि जो स्वामी ने उसको दिया है उसका वो हिसाब किताब ठीक से रखे, क्योंकि उसको लेखा देना होगा। और इस भंडारी में एक विशेष बात पाई जाए कि वो विश्वास है, अर्थात भंडारी स्वामी नहीं है। भंडारी स्टूवर्ड इज नॉट ओनर, वो स्वामी नहीं है। दूसरी बात, वो दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई। अगर धन दिया है, समय दिया है, स्वास्थ्य दिया है, योग्यता दी है, टैलेंट दिया है, वो दिया गया है, मुझे उसको हिसाब देना है। परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उसको हिसाब देना होगा, जिस तरह से भंडारी को दिया गया था। तीसरी बात, पहली बात मैं ओनर नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, दूसरी बात मुझे दिया गया है, तीसरी बात मुझे लेखा देना होगा, और इसलिए मुझे विश्वास योग्य होना है। क्या मतलब है? जो चीज मुझे दी गई है मुझे उसका सच्चा और ईमानदारी से उसका उपयोग करना है। पहली बात, सच्चाई से और ईमानदारी से उपयोग करना है। बाइबल कहती है जो कैसर का है वो कैसर का दो, जो प्रभु का है प्रभु का दो। इसलिए एक विश्वासी अच्छा मसीह कटिया नहीं लगाता, एक लड़की वाले किसी लड़के को देखने के लिए आए और लड़का बहुत अच्छा है, बातचीत होने लगी। तो लड़के वालों ने पूछा, अच्छा ये बेटी की आमदनी क्या है? उन्हें उसके ये तनख्वाह ये मिलती है। तनख्वाह तो ये मिलती है लेकिन ऊपर की आशीष बहुत है, लेकिन ऊपर की आशीष बहुत है, हर महीने उसको ऊपर से 1000 से 2000 रुपए मिल जाता है, ऊपर की आशीष। ये ईमानदारी नहीं है, ये ईमानदारी ये वो नहीं है। एक विश्वास के व्यक्ति धन के मामले में, हर चीज मामले में, जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दिया है उसके मामले में वो सच्चा और ईमानदार होता है। दूसरी बात, एक विश्वास के व्यक्ति जो कुछ उसको दिया गया है उसको वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ, प्रार्थना के साथ उसका उपयोग करता है, प्रार्थना पूर्वक उपयोग करता है। जब पैसा आता है सबसे पहले हम बहुत सारे वाले हमारे सामने रहते हैं, है ना, दूध वाला, किरायेदार वाला, और क्या नाम से बनिया वाला, और ये वाला और वो वाला बढ़ता जाता है, वो बढ़ जाता है। बाद में सोचते हैं अरे तो कुछ तो बचा ही नहीं है। क्यों? ना हमने प्रभु धन्यवाद दिया, ना हमने प्रभु से प्रार्थना करी, ना प्रभु से बुद्धि मांगी, ना कुछ है। तो हम अपनी बुद्धि को लगाए रहते हैं और हमेशा कर्जदार बने रहते हैं, रोते रहते हैं हमेशा। इसीलिए तू अपनी समझ का सारण में बार बार इस पद को आपके, क्योंकि उस पर और अगर विस्तार के जाएंगे तो आगे चल के प्रभु देने के बारे में बात करता है। हमें जब भी प्रभु हमें देता है, हमारी तनख्वाह मिलती है, हमें आय मिलती है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना सीखना है। स्वास्थ्य उसकी ओर से है, जीवन उसकी ओर से है, नौकरी उसकी ओर से है, सब कुछ उसकी ओर से है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 36 पद, सब कुछ परमेश्वर की ओर के, उसके द्वारा और उसकी के लिए, उसकी महिमा युगानी होती रहे। इसलिए मैं भाइयों तुम्हें आता है भाइयों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता और बलिदान करके चाहो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चल बदलता जाए और तुम परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की ओर से। तो हमें देखना है धन्यवाद। तीसरी बात, बुद्धि और समझ के साथ योजनाबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। बुद्धि और समझ के साथ, परिवारों में बड़ी समस्या होती है। पत्नी कहती है मेरा है, पति कहता है मेरा है। हमारा बच्चे, अगर बच्चों का परिचय करना है, ये लड़का मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का बहुत शरारत है, बहुत कम बोलते हैं हमारा, बहुत कम बोलते हैं हमारा, है ना, हमारा पैसा, हमारा लड़का, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा। जब हम अकेले थे तो मेरा चलता था, लेकिन जब हम परिवार में आ गए तो हमारा हो गया, लेकिन उसके बाद भी मेरा तेरा चलता रहता है। और इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की समझ नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, हम परमेश्वर की योजनाओं को जानते, परमेश्वर के वरदानों नहीं जानते, और जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं जानते, जो हम चाहते हैं वो करते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं, तीसरी बुद्धि और समझ के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल करिए। अब यहां पर दो स्वामी के बारे में बात है। तो पहली बात हमने देखी किस तरीके से हमें परमेश्वर के धन को ऐसे उपयोग करना है, हम अभी और विस्तार में जाएंगे, और उपयोग करना है जिससे कि हम लोग को बचा सकें और लोगों को बना सकें। हमें अपने परिवार खर्च चलाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, अभी हम देखेंगे आगे चल के, है ना। लेकिन हमारा ध्यान, हमारा जीवन क्यों है, हमको क्यों प्रभु ने बचाया? हमें परमेश्वर ने इसलिए बचाया ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग बचाए जाएं। मैं खास तो विश्वास की बात कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ प्रभु आपकी ओर से हमारे लिए मिला है। यदि आपने प्रभु को नहीं जाना है तो आप उस समझ को भी नहीं प्राप्त करेंगे कि कैसे धन को इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रभु को जानना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सच है, धन सबसे बड़ी आशीष नहीं है, सबसे बड़ी आशीष उद्धार की आशीष है। अगर उद्धार का जीवन नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा जीवन चाहे हमारे पास कितना धन हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अनंत काल में मृत्यु में जाएंगे। जैसे पिछले बार मैंने आपसे कहा था कि यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। और इसलिए प्रभु की इच्छा सबसे बड़ी यह है कि मनुष्य उसके उस बलिदान पर विश्वास करे जो उसने मानव जाति के पाप की छुड़ौती के लिए स्वयं को बलिदान किया, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य दंडित हो चुका था, उस पर दंड की आज्ञा लग चुकी थी और उसके कारण लिखा है पाप की मजदूर तो मृत्यु है। जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मारा जाएगा। सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी में मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार का स्वीकार करता है, प्रभु उसको उद्धार में प्रवेश कराता है और तब उसके अंदर वो परमेश्वर के संतान बन के अब इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर के राज के बारे में सोचता है और आगे बढ़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार नहीं करा तो धन सबसे बड़ी आपकी आशीष नहीं है। सबसे बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह का उद्धार और उसकी संतान होना है सबसे बड़ी। और इसलिए आपकी प्राथमिकता यह है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करें। चर्च में आने से नहीं, बाइबल में पढ़ने से नहीं, धर्म के काम करने से नहीं, कुछ और करने से नहीं, लेकिन सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से अपने पापों से पश्चाताप कर उस पर विश्वास करने द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है। तब उसके बाद परमेश्वर मेरी और आपकी बुद्धि खोलता है कि जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं उन सारी उद्धार की आशा के बाद जो और आशीषें दी हैं उस आशीष में एक धन भी है, उसको कैसे मुझे उपयोग करना है। पहली बात तब मेरे अंदर ये होता है कि मैं उस धन को परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए उपयोग करूं। दूसरी बात मैं उस धन को ईमानदारी से विश्वास से उत्ता के साथ एक भंडारी के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। तीसरी बात यहां पर लिखा हुआ है तब 13 पद में कोई भी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या वो तो एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुष्ट रहेगा। मेरे प्रियो, धन आपको अच्छी दवाई दे खरीदवा सकता है, धन आपको अच्छी दवाई खरीदवा सकता है लेकिन नींद नहीं प्रदान कर सकता। धन आपको अच्छा बिस्तर प्रदान करा सकता है लेकिन आपको आराम प्रदान नहीं कर सकता। समझ रहे, ये चीजें परमेश्वर ही देता है। और अगर पढ़ते जाइए परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में और सब उपदेश में, तो बार बार बहुत सारे पद हैं कि धन क्या करता है। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। क्या मतलब है? मेरे जीवन में स्वामी कौन है? मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता तो स्वीकार किया है, लेकिन क्या सचमुच में वो स्वामी है? क्या सच में वो स्वामी है? मैं अपने जीवन की साक्षी के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं कि कैसे प्रभु ने मुझे सिखाया है और मैं अभी भी सीखता चला जा रहा हूं। उन अनुभवों से प्रभु ले गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर का धन से कैसा आदर करना है, लेकिन घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिन घटनाओं में, और मैंने पहले शायद आपको याद होगा कि मैंने बस में रहकर खड़े होकर मैंने प्रार्थना के साथ पश्चाताप करके आंसू के साथ प्रभु से देना सीखा और समर्पण किया। बस में, चलती बस में ऐसे प्रभु अनुभव में ले गया। स्वामी, हम पैसे को चलाते हैं, पैसा हमें नहीं चलाता। हम पैसे को चलाते हैं, पैसा हमको नहीं चलाता। जब पैसा हमें चलाता है, पैसा हमारा स्वामी बन जाता है। हमारा स्वामी प्रभु है, वो हमारे ऊपर राज करता है, उसने हमारे हाथ में पैसा दिया है और हम पैसे को कमांड देते हैं, पैसे को हम कमांड देते हैं। लेकिन जब पैसा हमें कमांड देने लगता है तो इसका मतलब वो हमारे पर प्रभुता कर रहा है, वो हमारा स्वामी बन रहा है। और इसलिए हमें सीखना है, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, अगर परमेश्वर हमारा स्वामी है तो हमारा विश्वास, हमारी निर्भरता, हमारे हृदय में उसकी दया और संतुष्टता ये पाया जाती है। हमारा विश्वास, कल हमारी आवश्यकता कैसे पूरी होगी, हमारा विश्वास है प्रभु उसको पूरा करेगा। मेरे घर में कोई आता है, मेरे परिवार में कोई आता है, कोई आवश्यकता में है, या प्रभु का काम कोई दिखाई देता है, तो हम ये नहीं सोचते कल क्या होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख बन के जीवन व्यतीत करें, आगे मैं आऊंगा उस पर। लेकिन पहली बात, हमारी निर्भरता, हम प्रतिदिन के लिए अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनको देखो, उन चिड़ियों को देखो जो ना बोती है ना काटती है, लेकिन परमेश्वर उनकी कैसे सुधि लेता है। क्या तुम गौरैयों से बढ़कर नहीं हो? और परमेश्वर हमारे, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ये जो संसार में, जिस संसार में है ना, हमें घुमा के तीन चीजों के पीछे हमें दौड़ाता है। उसके ये नहीं कि हम उसके बारे में सोचे ना, ये नहीं कहना, लेकिन कई बार वो इतना अधिक हमें कंट्रोल करता है, रोटी कपड़ा मकान, चाहे कर्जा लेंगे, चाहे ये लेंगे, चाहे वो लेंगे, मकान हमारे पास होना चाहिए, चाहे कर्जा लेंगे। और कर्ज मारो, कर्जा लेके हम रोज रोते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे घर में, ऐसा परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर सड़क पे नहीं रखता किसी को, परमेश्वर नंगा नहीं रखता किसी को, परमेश्वर भूखा नहीं रखता किसी को। हो सकता है कठिन स्थिति में हम जाएं, कई बार कठिन स्थिति में जाना पड़ता है, कई बार घटी कमी में जाना पड़ता है, लेकिन वो दो कारणों से होता है घटी और कमी, उसमें मुझे देखना है। एक घटी कमी मेरे स्वयं के कारण से होती है, यदि मैं आलसी, सुस्त, घमंडी, लापरवाही के साथ जीवन व्यतीत करता हूं तब होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, एक निर्दय व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, हमारा देश हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके, मैं बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं कि आदमी अगर मेहनती नहीं है तो जरूर रोएगा, अगर सही तरीके मेहनती है। मतलब हमारे पास कितने बच्चे हैं यहां पर, ये बच्चे छुट्टियों में अपने घर में, गांव में मजदूरी करते थे और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे। एक भाई, हम यहां ट्रेनिंग कर रहे थे, दो बच्चे आ गए हमारे पास, हम बाराबंकी में थे उस समय, और जब मैं ट्रेनिंग पढ़ा था और मैंने उनको इंकरेज किया, मैंने कहा बच्चों तुमको, तुम दसवीं क्लास में, लेकिन तुम्हारे गांव में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है या पढ़ नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं, क्या तुम एक घंटे के लिए उनके साथ उनको नहीं समय दे सकते हैं? और वो बच्चे थे जो पूरी गर्मियों में मजदूरी करके अपनी पढ़ाई को करते थे। और दोनों, एक आनंद नाम था और एक उज्ज्वल सदस्य नाम था, दोनों गांव में गए भदोई में, और जाकर उन्होंने, दोनों ने उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। अपनी मजदूरी करते थे और गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, और उससे अपने स्कूल में भी चलाते थे, फिर भी पढ़ाते। मैं आपको प्रेरित करना चाह रहा हूं, थोड़ी बहुत सारे ऐसी चर्चा अगर मैं सुनाने लगूं, एक के बाद आपको सुनाता चला जाऊंगा अनुभव को। लेकिन क्यों ऐसा है, हम धन को अपना स्वामी ऐसा बना लेते हैं कि वो हमें चला रहता है, रात भर सोचते, चलते, जागते, फिरते वही रहते हैं, और हम अपना खाने को भी नहीं खाते, घी ला के एक किलो रख देते हैं, देखते हैं, चाट लेते हैं, कहते हैं चलो भैया 5 साल चल जाएगा। हमें, हमारे साथ एक भाई था, उसकी मृत्यु हो गई, और अच्छा काम आता था, अच्छा था, मकान था, सब कुछ था, सब कुछ था, और एक कमीज पहन करके पूरे 1 साल 2 साल जीवन। हम कहते हैं भैया, मेरे वाइफ ने, आंटी ने कहा कि भैया आप क्यों ही पुरानी साइकिल लेके चलते हैं आपके पास? अगर मैं जिस दिन स्कूटर खरीद लूंगा ना, लोग सोचेंगे इसके पास बहुत धन है। ऐसा नहीं कि उसके पास धन ही था, और बेचारे की जब मृत्यु हुई सब कुछ छोड़ के चला गया, और बहुत दुखदायी मृत्यु हुई। क्यों? प्रभु का स्वामी नहीं था, विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी स्वामी देखना, क्या हमारा जीवन का स्वामी कौन है? दूसरी बात, क्या सच में प्रभु में चला रहा है? धन अगर हमारा स्वामी है तो लालच, झूठ, असंतुष्टता, धोखा, ये सब चीज हमारे जीवन बढ़ता चला जाएगा, ये सब कुछ हमारे पर, चोर, ये सब बढ़ता चला जाएगा। घर में हम कटिया लगाएंगे, टैक्स पे करना ना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म में फ्री प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर घुसेंगे, फ्री यात्रा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, नहीं अगर धन प्रभुता कर रहा है। क्योंकि हम केवल ही चाहेंगे किसी ना किसी रीति से मैं धन को बढ़ाता चला जाऊं, बचता चला जाए, बचता चला जाए, बचता चला जाए। बुद्धिमानी से बचाना है, समझ के साथ बचाना है, लेकिन हमें जीवन को देखना है परमेश्वर क्या कह रहा है। तो हमारा स्वामी कौन है? क्या हमारा स्वामी सचमुच प्रभु है? और अगर प्रभु स्वामी है तो हम प्रभु कहते हैं, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है तूने दिया, सब कुछ परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के। इसीलिए कहता है अपने शरीर को समर्पित करो ताकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। क्या मतलब है? जब पुरानी बुद्धि वो शैतान के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धि है जिसके द्वारा हम सब कुछ गलत सोचते हैं, संसार की बातों सोचते, पृथ्वी की बातों सोचते, उन सारी चीज सोचते हैं जो हमें संसार और शरीर में फंसाती चली जाती, सत्ता में फंसाती चली जाती। हमारे तीन शत्रु हैं, शरीर, शैतान और संसार, और उसको फंसाती चली जाती। लेकिन जब प्रभु हमारे अंदर प्रभुता करता है, हम इससे निकलकर प्रभु की समझ और बुद्धि को, जो नई बुद्धि आती उससे लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये समझ। और तब उसके बाद जब ये है, तो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, धन नहीं है तो धन नहीं चलेगा, प्रभु हमें चलाएगा। और तब प्रभु की बुद्धिमानी से, बुद्धि की समझ, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की सहायता से हम धन को कैसे उपयोग करेंगे। पांच बातें मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगा कि हमें धन के उपयोग करते समय क्या करना है। पांच बातें। पहली बात, अगर परमेश्वर हमारा है तो हमें, परमेश्वर हमें सही रीति संचालन करना सिखाएगा, सही संचालन करते हुए उस संचालन में हम देना सीखेंगे। पहली बात, जब प्रभु हमें जीवन दे करके, हमें हमारी आय है, कोई भी है, पॉकेट मनी है, इनाम है, किसी प्रकार से हमारे पास, क्योंकि हम धन की बात कर रहे हैं इस समय और दूसरी चीजें बात नहीं कर रहे, मैं धन की बात कर रहा हूं। अगर जो चीज हमारा है धन है, तो सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करके जो प्रभु का हिस्सा है उसको देते हैं। पहली बात, हमारा जो बजट है, हम जो बजट, मस्तियों का बजट बनाना सीखना चाहिए। भैया अक्सर लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं, कहकर बैठा के बताते हैं अच्छा अपना, हम और उनकी मदद करते हैं। मैंने भी कल एक भाई के साथ बैठकर मैं उसको पूरा बजट बनवा रहा था। मैं, हम लोग करते हैं, दूसरी मदद करते हैं, हम जानते हैं ये जरूरी है। और तब पहली बात, जो कुछ भी आपको मिलता है उसका आप जो प्रभु का हिस्सा है, नीति वचन 3:9 के अनुसार, रिफरेंस बोलता जाऊंगा, निकलाऊंगा नहीं, लिख लीजिएगा नीति वचन 3। और न केवल इतना, लेकिन प्रति सप्ताह जब आप आराधना में आते हैं, प्रभु को निकाल करके अपना कम से कम दशमांश आराम है, प्रभु अनुग्रह के द्वारा बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है, उसको एक भाग को निकालना जो प्रभु के काम के लिए देना है, जिससे सुसमाचार प्रचार होता है, जिससे आत्माएं जीती जाती हैं, आप उसमें संभागी होते हैं, आप स्वयं लोगों को साक्षी देते हैं। लेकिन आप जब धन कलीसिया में देते हैं या अपने काज प्रभु की कार्य सेवा में देते हैं, तो आप उन आत्माओं को बचाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, आपका योगदान उसमें होता है। पहली बात तो वह है, और 27:16 पहले दूसरे पद में, जब तुम प्रति सप्ताह इकट्ठा हो, वहां पर लिखा हुआ है, तो तुम प्रति सप्ताह अपने में से निकाल कर कुछ प्रभु के कार्य के रखो। और इसीलिए ये प्रति सप्ताह, इसीलिए वचन के अनुसार यहां पर हम प्रति सप्ताह भेंट को लेते हैं और आपको अवसर देते हैं कि आप तैयारी के साथ आए और अपनी भेंट को आप दें परमेश्वर के वचन के अनुसार, और ये भेंट प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के राज के लिए, प्रभु के उसके लिए दी जा सके। इसीलिए हमने अकाउंट में जो पूरे साल हमारे पास धन आया, आप लोगों ने दिया है, वहां शीट लगी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट, जो पूरी रीति से आपके द्वारा धन दिया गया है, चाहे ऑफरिंग में दिया है, चाहे एनवलप में दिया है, चाहे किसी रीति दिया है, सारा का बाय खाता वहां लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बाद में आप पूछ भी सकते हैं किसी से भी। सो हमें प्रभु के भाग को देना सीखना है, कई तरह से परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए उपयोग होता है। दूसरी बात, हमें अपने परिवार की सुधि लेनी है। दूसरी बात, हमें अपने परिवार की सुधि लेनी है, और परिवार की सुधि लेते हुए हमें अपने परिवार की आस्थाओं को पूरा करने के लिए समर्पित होना है। कई बार लोग पैसा लेकर बाहर उड़ा देते हैं, परिवार बिचारा बैठा रहता है, बाहर जा रहे हैं। मैं अक्सर जब परिवार के मैं क्लास लेता हूं फैमिली लाइफ में, और मैं भाइयों से बात करता हूं, भाई लोग बाहर बहुत निकलते हैं, होटल में जाते हैं, एक घंटे बैठते हैं, खाते पीते, चाय पीते, तमाशा ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ। लेकिन क्या कितना वो अपनी पत्नियों के बारे में सोचते हैं, मेरी पत्नी बेचारी अकेली बैठी है। घर में आए, पति ने कहा खाना खा लीजिए, नहीं इच्छा नहीं है। क्यों नहीं इच्छा नहीं? अरे वो साथी मिल गया था ना, उसने ही खिला दिया। साथी मिल गया था, बेचारी पत्नी आपकी कितनी देर तक बैठी, भूखी बैठी है, आप साथी मिल गया था। ये आदतें अच्छी नहीं है, आप परिवार की चिंता नहीं, कभी हो जाता है। लेकिन अगर ये आपकी आदत बनी हुई है कि आप खाते हैं तो खिलाएंगे भी, या तो आप खाते हैं और आप खिला रहे हैं तो आप परिवार को इग्नोर करके आप अपने पैसे को बाहर ही खर्चा कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी कि आप परिवार का संचालन अच्छी तरह से करें। अब यह नहीं कि आप कर्जा लें, लेकिन जितना उसमें आपको योजना बनानी है। अगर आप कभी पूछना चाहते हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन करना है, बैठिए साथ मिलकर, इतना पैसा, अच्छा ठीक है हमें 1000 रुपए मिला, हमने 100 रुपए ही निकाल दिया, अब 900 रुपए, 900 रुपए में अगर 200 रुपए हमें किराए का देना है तो अब हमें यही करना है, उसके किस तरीके हम कर सकते हैं। प्रार्थना करिए, प्रभु कई सारी तरह से प्रभु आपकी सहायता करेगा ताकि आपको बुद्धि मिले। कई बार हमें सकले में रहना पड़ता है, हमने भी जीवन व्यतीत किया, सकले में रहना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 प्रभु, और इसीलिए वो कहता है मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में पैसे के बारे में सिद्धांत बनाया था। प्रभु में आने के बाद जब सेवा में आया, प्रभु ने मुझे सोच दिया पैसे के बारे में, और जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने सिद्धांत बनाया, और इस सिद्धांतों को आज तक मैं पालन करता हूं। नीति वचन 3:7-9 पद, धोखा और छल मुझसे दूर रहे। कहता है मैंने परमेश्वर तेरे से याचना की, सुलेमान कह रहा है मैंने तेरे से याचना की है और उसको पूरा करने के लिए, मेरा पूरा करने के लिए मुंह ना मोड़ना। और क्या वो मांग रहा है? धोखा और छल मुझसे दूर रहे। मैं धोखे के द्वारा, छल के द्वारा पैसे को नहीं कमाऊंगा। झूठ मुझसे दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है एक धर्मी झूठ से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर भी झूठ से घृणा करता है, नीति वचन में। और इससे दूर रहे, और मुझे मेरे प्रतिदिन की तू रोटी दिया कर, मुझे ना तो धनी बना कि मैं धनी बन करके भूल जाऊं कि मेरा बनाने वाला कौन है, ना तो मुझे कंगाल बना कि मैं अपने हाथों को दूसरे ओर फैलाऊं, लेकिन मेरी प्रतिदिन की आशा को पूरा कर। ये प्रार्थना थी, ये वर मांगा था सुलेमान ने, नीति वचन उसका 3:7-9 पद। अब मैं परमेश्वर से आज तक यही प्रार्थना करता। दूसरा सिद्धांत मैंने रखा था जो अपनी सेवा में और आज भी है, 2 कुरिन्थियों उसका 8:20-21 पद। हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हम इस बात में चौकस हैं कि हम उस दान के, उस अनुग्रह के, दान के विषय में या भेंट के विषय में ना केवल परमेश्वर के सामने लेकिन मनुष्य के सामने भी, और परमेश्वर जानता पर नहीं, मनुष्य के सामने भी हम ईमानदार बने रहे, कोई हमारे पर उंगली ना उठाने पाए। ये दो पुराने नियम से नए जिसको मैंने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया और प्रभु ने आज तक मेरी सहायता की है। और मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं कलीसिया के सेवक होने नाते आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी मनसा को देखता है, हमारे अंदर की हृदय को जानता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कंगाल बनाकर रखना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम अपने कारण कंगाल हैं तो परमेश्वर चाहता हम परिवर्तित हो जाएं। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता कभी हम कठिनाई में होकर चले तो परमेश्वर हमें परखता है कि ऐसे समय में हम कितने विश्वास योग्य हैं, कितना उसके ऊपर निर्भर हैं, कितना हम उसकी बात जो रहे हैं। और लेकिन परमेश्वर कहता है वो तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परंतु तुम्हारा निकास भी करेगा। 1 कुरिन्थियों 10:13 पद, वो किसी ऐसी परीक्षा में, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है, और इसलिए हमें जबरदस्ती वो कभी भी कंगाल नहीं बनाना चाहेगा। कठिनाई आ सकती है पर प्रभु उसमें हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमें संभालेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। तो परिवार की चिंता करनी है, परिवार की चिंता में बच्चे आ गए, माता पिता को बच्चों की चिंता करनी है, बच्चों को माता पिता की चिंता करनी है। दोनों रेफरेंस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। 2 कुरिन्थियों 9:7 पद, यहां पर पौलुस कहता है बच्चों को नहीं लेकिन माता पिताओं को बच्चों के लिए जमा करना है, इकट्ठा करना है, देखना करना है माता पिताओं के लिए। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए भविष्य के लिए उनके बारे में सोच सके, ना केवल माता पिता की। लेकिन पहला तीमोथियुस उसका 5:14 में वो पौलुस कहता है, लिखता हुआ है कि मां बच्चों को अपने माता पिता की या बुजुर्गों की देखभाल करना उनकी सुधि लेनी है। तो दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरा क्रंथियों 12:14-15, पहला तीमोथियुस 5 और 4। तब आगे चल के तीसरी बात, हमें कुछ जमा करने के लिए तैयार होना है बच्चों की चिंता करते हुए, ताकि मैं यहां पर भाइयों को बहुत बात करता हूं, बोलता हूं रहता हूं, पैसा जितना आता खर्च करते मैं हमेशा बोलता हूं। और कितने भाइयों को मैं जाकर बैंक ले गया और मैंने कहा आप आरडी खोलिए, चाहे 5 रुपए खोलिए, ये पाप नहीं है। हां अगर आप प्रभु को नहीं दे रहे हैं, आप दूसरों की सहायता नहीं कर रहे जिस पर वहां आ रहे हैं, लेकिन केवल जमा ही जमा करते जा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाए ये हो जाए और दूसरा विश्वासी की आस्था पूरी ना हो, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। हमें ही करना है, अपने परिवार की चिंता करनी है, अपने भविष्य की चिंता करनी है, इसके बाद दूसरों की सहायता करने के लिए हमें अपने हाथों को ढीला रखना है। हमें करना है, प्रभु को देना है पहली बात, परिवार की चिंता करनी दूसरी बात, को जमा करना तीसरी बात, चौथी बात दूसरों की सहायता करने के लिए। नीति वचन उसके 11:24-25 में जो छितराते हैं दया के साथ, दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों की आस्थाओं में खड़े होते हैं, सहायता करते हैं, परमेश्वर उनके भंडार को भरपूर करता है। बहुत सारे पद है नीति वचन में। तो दूसरों की सहायता करने के लिए कई बार हमारे पास होता है लेकिन हम मना कर देते हैं। हां अब ये भी समझदारी, कई बार उसका फायदा भी लोग उठाते हैं, उसको भी हमें समझना, वो भी वचन सिखाता है। वचन एक अकेली शिक्षा नहीं देता, वचन सब कुछ के बहुत बैलेंस टीचिंग देता है, और हमें बुद्धिमान तो होना है, समझदार होना है, तब हमें दूसरे गरीब है साथ में। यही कारण है कि हम समय में लोगों को सहायता करते रहते हैं। पिछले दिन में एक घर का आग लग गई, उसको हम लोगों साथ मिलकर के उस घर में हमने सहायता की, आप लोगों ने उसमें सामग्री को दिया, सामान दिया, यहां अनाउंस करा, उनके घर को हमने एस्टेब्लिश किया। कितने 3-4 घर को हम इस तरह से लोगों का है, कितने लोग बीमारी में, हमने कल एक बहन आ गई मेरे पास, हम लोग आंटियां हम लोग बातचीत कर रहे थे और पता चला उस बहन ने वो क्या नाम से ऐसी बीमारी है, कर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो शायद वो कैंसर में डेवलप हो सकता है ना। मैंने क्यों आपने रोक दिया, उसने अपनी मजबूरी बताई, मैंने आप परेशान मत रहिए, आप आइए, हम लोग साथ मिलकर के, हम करीब से साथ मिलकर के आपके लिए खड़े होंगे। हमें करना है इससे पहले कि ये बीमारी और भयंकर हो जाए, हमें सहायता करनी है। हम मसीह में, मसीह के परिवार में हैं, एक परिवार में एक देह को देह के हम अंग हैं। एक उंगली को चोट लगती है तो दूसरे शरीर को कंपन हो जाती है, हमें साथ मिलकर खड़े होना है। ये परमेश्वर ने धन इसलिए दिया है केवल अपनी अपनी आस्थाओं को पूरा करने की, कई बार हमें त्याग करना चाहिए। कई बार जब हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं, कितने एवरी क्रुसेड में सेवा, एक बहन मछली के मार्केट में जाती थी, 2 घंटे बैठती थी और 2 घंटे बैठ करके मछली साफ करती थी और तब उसका पैसा जमा करके तब वो पैसा बेचती थी सेवा के लिए, ताकि सेवा हो सके। उड़ीसा में कितने गरीब लोग हैं, लेकिन वहां एक ऐसा समूह है जहां बहन है, वहां पत्ते के पत्तल बनाती हैं और बना करके उनको बेचती है और उससे पैसे जमा करके तब वो, मैं भूल गया, एक क्लिप दिखाना चाहता मिजोराम का, ध्यान से उतर गया, भैया ने कहा था दिखाने के लिए, मैं ध्यान से उतर गया कि उड़ीसा में तब उससे पैसे निकाल के उस सेवा के लिए देते हैं। मिजोराम में चर्च में आते हैं, वो कहीं अंडा है, कहीं लकड़ी है, कहीं चावल है, मुट्ठी का चावल है, ये अपने दानों को देते हैं कटन। और मिजोरम में सबसे अधिक लोग आज सुसमाचार प्रचार के लिए वहां से भेजे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल अपने लिए नहीं सोचते हो। जब वो दान इकट्ठा आता है, पिछली बार हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय को पढ़ रहे थे, उसमें यही लिखा था, अगर तुम हमारे पास है तुम दूर यात्रा करो, अगर वो सामान लेकर वहां जाओ तो उस सबको इकट्ठा करना और उसको बेच देना, और जो धन इकट्ठा है उसके रूप को इस तरह से उपयोग करना, और वही काम ये मिजोरम के लोग कर रहे हैं। सामान देते हैं, इकट्ठा होता धन होता है, और एक साल में कितने करोड़ रुपए वो इकट्ठा करके सुसमाचार प्रचार के लिए, मिशन सेवा के लिए लोगों को दूसरे प्रांतों में भेज रहे हैं। ये देने का है, ये इच्छा हमारे अंदर आने चाहिए। सो हमें दूसरों की सहायता करनी, कलीसिया में परिवार में देखना कौन हमारे बीच में निर्मल है, किसकी आवश्यकता है, किसको हम खड़ा करते हैं, किसकी सहायता करते हैं। हमें केवल ये नहीं मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, ये नहीं। अगर मुझे मिल जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे देना भी है, मैं कब दे सकता हूं, कब कर सकता हूं। पांचवी और अंतिम बात, मुझे कर्जदार नहीं रहना है। लेना पड़ सकता है, आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन उसको लौटाना है। एक सच्चा भंडारी के अंदर होना है। कभी समय विलंब हो सकता है, लेकिन उसके तरीके हैं, उसके तरीके हैं। और इसलिए वो भी परमेश्वर के वचन में कहा है, भजन संहिता 37:21 में, भजन संहिता 37:21 में हमें ये भी समझना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान होना, यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा। प्रभु आपकी बुद्धि चाहिए, आपकी समझ चाहिए, ताकि जो जीवन आपने मुझे दिया है, इस जीवन में जो जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जो भी आपने मुझे भंडारी बनाया है, चाहे किसी चीज का भी, लेकिन आज हम धन की बात कर रहे हैं, मैं उसको कैसे उपयोग कर सकूं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है भजन 34:10 में, ना तो मैंने जवान और मैंने शेरों को भूखे देखा है, परंतु यहोवा के खोजों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। भजन 37 में कहता है, मैं बालक था, बालक से बूढ़ा हो गया, और इतना समय हो गया मुझे, लेकिन मैंने अपनी पूरी आयु में किसी भी धर्मी जन को ना तो त्यागा हुआ देखा है, ना उसके बालकों को भीख मांगते देखा है। दाऊद कह रहा है, क्या मतलब है? मतलब यह है, परमेश्वर हमारा ऐसा धर्मी परमेश्वर है, यदि हम परमेश्वर के मन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके संचालन में, उसके वचन के प्रकाशन में होकर अपने जीवन का संचालन करें, अपने धन का संचालन करें, परमेश्वर हमारे वंश वंश को संभालता है, वंश के वंश को संभालता है। लेकिन हमारे हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे हृदय में ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, और हमारे हृदय में संतुष्टता होनी चाहिए। और इसीलिए प्रभु ने कहा, यहां पर कहा, इसलिए कहा कि तुम दो जनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारा प्रभु है, या धन हमारा प्रभु है? फिर से तीन बात कहकर समाप्त करूंगा। इस धन के द्वारा हम प्रयत्नशील रहते हैं कि परमेश्वर के राज में लोग जुड़ सके। ये देना उसी का एक भाग है, उसी का एक सहयोग है। ना केवल इतना, लेकिन इसके साथ हम धन को विश्वासयुक्तता के साथ एक भंडारी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको भंडारी बनाया है। फिर तीसरा, उस धन के द्वारा हम धन के नहीं लेकिन परमेश्वर की सेवा करते हैं, कि वो हमारा प्रभु है और उस प्रभु ने हमें ये धन दिया है उत्साह करने के लिए। वो हमारा धन हमारा प्रभु नहीं बनता, परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो हमारे पर प्रभुता करने वाला है। हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे सोच को वो नियंत्रित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर के लिए शांत रहें, अपने बारे में विचार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको सबसे बड़ी आशीष उद्धार की आशीष दी है। वो इकलौता पुत्र जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, और उसके वचन में लिखा हुआ है रोमियो 8:28 में, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा वो तुम्हें सब कुछ और क्यों करने देगा। सबसे बड़ा पुत्र हमारी धरोहर है, सबसे बड़ा उसका पुत्र हमारा धन है, लेकिन हमारा मन प्रभु पर निर्भर होना है। प्रभु सहायता करे कि जो नाश होने वाली चीज है एक दिन चली जाएगी, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी समझ बुद्धिमानी से उपयोग कर सकें, उसको दुनिया में परिवार का संचालन करने के लिए, भविष्य के लिए सोचने में, लोगों की सहायता करने में, और उसके साथ साथ लोगों की सहायता करते हुए ईमानदार जीवन को व्यतीत करने में। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें अपना बनाया है, यह हमारे भले कामों के कारण नहीं हुआ। हम तो प्रभु नाश हो रहे थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, पर आपने हमें बचाया है और इसलिए बचा लिया ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जा सके। और प्रभु जी, धन जो आपने हमें दिया है, हमें समझ दें कि हम आपकी बुद्धि समझ को प्राप्त करके उस विश्वास के जीवन को लेकर के उस रीति से उपयोग कर सकें ताकि दूसरे लोग भी बचाए जा सकें। कई बार ये धन हमारे परिवारों में कलह का कारण बन जाता है, प्रभु ऐसा ना होने पाए, आपकी प्रभुता हो, आपका प्रेम राज करें, आपकी समझ राज करें, और केवल धन परिवार को संचालन करने के लिए, आस्थाओं की पूर्ति तक और आपके कार्य के लिए उपयोग किया जा सके। हमें सिखाएं प्रभु जी, हमें आपकी समझ चाहिए, हमें आपके अनुग्रह चाहिए, वचन की रक्षा करें और वचन में हमें साथ ले चलें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।